ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृदः कस्य स्विद्धनम्। इस ईशावास्य उपनिषद के प्रथम मंत्र पर विचार चल रहा है। केवल एक मंत्र के कारण ही इस उपनिषद का नाम ईशावास्य उपनिषद पड़ा है। आगे के जो मंत्र है वो तो केवल इस मंत्र की व्याख्या मात्र है, विस्तार मात्र है। ये केवल एक मंत्रोपनिषद ही मात्र है। इस उपनिषद का यही एक मंत्र इस मंत्र के नाम पर ही इस उपनिषद का नाम ईशावास्य पड़ा है, ईशावास्य उपनिषद। इस मंत्र के द्वारा स्पष्ट कर दिया श्रुति ने कि इस संपूर्ण जगत के अंदर ईश्वर ही है और ये संपूर्ण जगत ईश्वर ही है। जगत ईश्वर में है और ईश्वर जगत में है। व्याप्ति का मतलब ही यही होता है, व्याप्य व्यापक में हो और व्यापक व्याप्य में हो। क्या किस रूप से ईश्वर इसके अंदर व्याप्त है, तो ज्ञान ज्ञान रूप से, आनंद रूप से, सत्ता रूप से है। इसलिए वेदांत शास्त्र में ये कहा है कि ये प्रत्येक वस्तु में पांच तत्व है, अस्थि भाति प्रिय, नाम और रूप। प्रत्येक वस्तु के अंदर नाम और रूप जो है ये अस्थि भाति प्रिय इसके द्वारा व्याप्त है। नाम और रूप अस्थि भाति प्रियता में व्याप्य है। व्याप्य जो वस्तु होती है न्यून देश, न्यून देश, न्यून देश वृत्तित्वम व्याप्यत्वम, ये कहा जाता है कि जो अल्प देश में रहे, न्यून देश, न्यून देश का मतलब थोड़ा देश, थोड़े देश में जो रहता है उसको व्याप्य कहा जाता है, और अधिक देश वृत्तित्वम व्यापकत्वम, जो अधिक देश में रहता है उसको व्यापक कहा जाता है। इसलिए ये संपूर्ण जगत अस्थि प्रिय, अस्थि भाति प्रिय, अस्थि का मतलब होता है सत्ता, भाति का मतलब होता है ज्ञान, और प्रियता का मतलब होता है आनंद। अस्थि भाति प्रिय अर्थात जो सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, ये श्रुति ने जो ब्रह्म का वर्णन किया है, इस रूप से ये जो लक्षण किया है, इस लक्षणों के द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। अर्थात वास्तविक नाम रूप की कोई सत्ता नहीं है, क्योंकि नाम रूप उसमें भासता है। जो व्याप्य वस्तु होती है वो केवल भाष्यमान होती है, परंतु होने के लिए, दिखने के लिए नाम रूप जरूर है, परंतु होने के लिए नाम रूप नहीं है। इसलिए नाम और रूप ये माया का अंश कहा जाता है, और अस्थि भाति प्रिय ये ब्रह्म का अंश माना जाता है। इसलिए ये दो वस्तु से ब्रह्म और माया, इन दोनों वस्तु से ये संपूर्ण जगत बना हुआ है। इसके अलावा दूसरा कोई छठा तत्व नहीं है इसके अंदर। तो आप कहेंगे गुण है, धर्म है। नहीं, गुण भी रूप के ही अंतर्गत आ जाते हैं और धर्म भी रूप के ही अंतर्गत आ जाता है। अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं है। यही ऊपर बता दिया जगत्याम जगत। इसके द्वारा ये श्रुति ये भी बता रही है कि दो प्रकार का जगत है। जगत कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है। कौन सा? एक ईश्वर निर्मित जगत और एक जीव निर्मित जगत। ये प्रेमपुरी किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया कि जीव ने बनाया? जीव ने बनाया। इन गांवों का निर्माण किसने किया? जीवों ने। ईश्वर का जगत क्या है? आत्मनः आकाश संभूतः आकाशाद वायोः वायोरग्निः अग्निरापः। ये जो पंचभूत है, ये पंचभूत ईश्वर की सृष्टि है। ये किसकी सृष्टि है? ईश्वर की सृष्टि। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, और आकाश के आगे, आकाश के आगे क्या है? आकाश के आगे है महत्तत्व। महत्तत्व के आगे है अहंकार, और अहंकार के आगे है ईश्वर। क्या एको हम कहा कि नहीं? तो ये हम, एको हम, अहम, मैं एक हूं, तो ये अहम है कि नहीं है? ये अहम कौन है? ये अहम ईश्वर है। ये दो अहम रूप जो ईश्वर है, इस ईश्वर ही मत तत्व क्या है? ईश्वर के बुद्धि का नाम है महत्तत्व। बुद्धि का मतलब होता है ज्ञान। ईश्वर का जो ज्ञान है, देखो, जीव का ज्ञान और ईश्वर का ज्ञान। ईश्वर को ज्ञान स्वरूप क्यों कहा जाता है और जीव को अज्ञान स्वरूप क्यों कहा जाता है? मधुसूदन भाई, मैं कथा नहीं करता, मेरे को कथा नहीं आती। अब मैं क्या करूं, मैं लाचार हूं, मेरे को कथा आती ही नहीं। मैं पता नहीं क्या होता है, मैं जैसा यहां बैठता हूं वैसा ही मेरा दिमाग खेल आउट हो जाता है। इसलिए समझने में थोड़ी सी कठिनाई तो जरूर होती है, परंतु ये तत्व को ही समझने के लिए ही आप लोग की यहां आते। ध्यान रखो, कथा तो बहुत चलती है, कथाकार तो बहुत है, परंतु तत्व को समझाने वाले विरले ही वक्ता होते हैं। ध्यान रखो, आश्चर्यवत। तो कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर के ज्ञान में और जीव के ज्ञान में क्या अंतर है? ईश्वर का ज्ञान स्वरूप है और जीव का अज्ञान स्वरूप है ना? ईश्वर के ज्ञान को ही ब्रह्म विद्या कहा गया है। क्या? ईश्वर के ज्ञान को ही क्या कहा जाता है? ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या का मतलब क्या? ब्रह्म ज्ञान है। तो ये, परंतु जीव के इसको ब्रह्म विद्या कहा जाता है क्या? जीव के ज्ञान को कहा जाता है क्या? कहा जाता है जीव के ज्ञान को ब्रह्म विद्या नहीं कहा जाता है, विज्ञान, जीव विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहता है कि नहीं? ये विज्ञान किन क्या किसकी देन है? जीव की। ज्ञान ईश्वर की है। इसलिए तो भगवान ने गीता के अंदर ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्षाम्य शेषतः, गीता पढ़ते हैं ना आप, तो गीता के सातवें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को क्या कहा था, ज्ञानम और विज्ञानम, विज्ञान के सहित मैं तुम्हें ज्ञान बता देता हूं। विज्ञान जीव का है, जीव के ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है और ईश्वर के ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। दोनों में अंतर है कि नहीं है? विज्ञान का मतलब क्या? अरे उल्टा ज्ञान, आप ये जो वो जो वैज्ञानिक जो शोध करते हैं, ये किसकी शोध करते हैं, अणु की, परमाणु की, आदि आदि, क्या एटम बम क्या क्या बना रहे कि नहीं बना रहे हैं, ये विज्ञान है, ये सब विज्ञान है, ये जीव का है। और इसी को ही हम सत्य मानते हैं। आज भारत का बड़ा दुर्भाग्य है, हम विज्ञान को महत्व देते हैं और विज्ञान से ब्रह्म ज्ञान की परीक्षा करने का या तुलना करने का या कसौटी लगाने का प्रयास करते हैं। विज्ञान विज्ञान चीज अत्यंत तुच्छ है। विज्ञान वो जो ब्रह्म ज्ञान है उस ब्रह्म ज्ञान की कैसी तुलना कर सकता है, यही मेरे को नहीं समझ में आया। जड़ है विज्ञान का मतलब क्या है? ब्रह्म ईश्वर का ज्ञान चेतन है, इसलिए तो चित कहा गया है। ईश्वर का ज्ञान जड़ नहीं है। और जीव का ज्ञान विज्ञान का मतलब होता है जड़ ज्ञान। क्या? चाहे कंप्यूटर कितना चले, गूगल से कितना भी आगे, परंतु जब तक मनुष्य का बुद्धि का उसके साथ संबंध नहीं होगा तब तक क्या वो कंप्यूटर या कुछ जो है तुम्हें बता सकता है क्या? हाँ बता सकता है। इसका मतलब चेतन का संयोग के बिना उसका कोई महत्व है? चेतन के बिना उसका कोई महत्व नहीं है, वो जड़ है। तो जीव का विज्ञान जड़ विज्ञान है। जीव का ज्ञान जो है वो जड़ ज्ञान है और परमात्मा का ज्ञान जो है वो चेतन ज्ञान है। चेतन ज्ञान का जब संबंध होता है विज्ञान के साथ अर्थात जीव के जड़ ज्ञान के साथ, तब वो कार्यान्वित होता है, विज्ञान कार्यान्वित होता है, परंतु बिना जड़ का नहीं। परंतु ये होता है हर जीव के विज्ञान में परमात्मा का ज्ञान के बिना वास्तविक जीव के ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है, वो है ही नहीं वास्तविक विज्ञान। इसलिए तो भगवान ने कहा ये ज्ञानम ते हम, क्योंकि हम अपने ज्ञान को बड़ा महत्व दे रहे हैं, परंतु हमारे ज्ञान के हमारे ज्ञान में महत्ता आई क्यों, कहां से आई है, इसके तरफ हमारी दृष्टि जाती है क्या? विद्वान कहते हैं कि हम तो बड़े शास्त्र के विद्वान हैं, हम ये बड़ा वैज्ञानिक है महाराज, ये बड़ा बड़ा जज है, डॉक्टर है, वकील है। अरे ये सब विज्ञान है, जड़ ज्ञान है, ध्यान रखो। ये जीव के विज्ञान में परमात्मा का ज्ञान व्याप्त है, इसलिए हमारे वेदांत शास्त्र में एक प्रक्रिया है, प्रमेयावच्छिन्न चैतन्य, प्रमाणावच्छिन्न चैतन्य और प्रमात्रावच्छिन्न चैतन्य, अर्थात इन सभी के अंदर चेतनता की व्याप्ति है। ये चेतनता क्या है? ये ज्ञान का ही नाम चेतन है, चित्त। चित्त चित का मतलब ज्ञान स्वरूप, ज्ञान चेतनता। यही चैतन्य की शक्ति जब हमारे बुद्धि में आती है, बुद्धि से मन में आती है, मन से इंद्रियों में आती है, तब इंद्रिया मान बुद्धि कार्यान्वित होते हैं, बुद्धि जानने लगती है, मन मानने लगता है, इंद्रिया कहने लगती है या देखने लगती है। यदि उस आत्मा की चैतन्यता का इसके साथ संबंध नहीं हो, तुम्हारी आंख है, तुम्हारा मन है, तुम्हारी बुद्धि है, सब कुछ है, परंतु चैतन्य का संबंध नहीं है तो क्या हो जाता है? कहते हैं तो मर गया जी, क्या हो गया? संबंध विच्छेद का नाम ही मृत्यु कहते हैं, समझ रहे ना? मतलब जड़ हो गया, मृत्यु जड़ है, मृत्यु चेतन नहीं, ध्यान रखो। तो अवास्य का मतलब होता है ईश्वर के ज्ञान के द्वारा, ईश्वर की सत्ता के द्वारा, ईश्वर की प्रियता के द्वारा। तुम जो जी रहे ना, तुम जो जी रहे ना, और जो अभिमान कर रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को संभालता हूं, मैं अपने बच्चे का पालन पोषण करता हूं, मैं अपने बच्चे को क्या क्या करता हूं, ये सब झूठी बात है। क्या ये सब अत्यंत झूठ है? समझ, थोड़ा नहीं, ये सब जो ईश्वर की जो प्रियता का, जो ईश्वर की प्रियता है, वो प्रियता पोषण कर रही है, ध्यान रखो। ईश्वर के आनंद से ही जीव का पोषण होता है, ईश्वर की प्रियता से ही जीव का पोषण होता है। जीव के पुरुषार्थ से जीव जी नहीं सकता, जीव के कर्म से जीव जी नहीं सकता है, और जीव के कितना भी प्रयत्न करे, डॉक्टर लोग कितना भी प्रयत्न करे, आखिर क्या कहते हैं? महाराज ऊपर वाले के हाथ में, उसकी प्रार्थना करो। क्यों कहते भाई? हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई वहीं से ही तो सूत्र तुम्हारे अंदर आया है। इसलिए डॉक्टर लोग जो होते हैं ना, वो ईश्वर के बहुत नजदीक होते हैं, वकील लोग तो बहुत दूर होते हैं। वकील लोग जो है ना, बिल्कुल एकदम ऐसे जैसा आप टीवी देखते हैं, और टीवी में भी टीवी देखते हैं, क्या टीवी में भी क्या देखते हैं? टीवी देखते हैं, और टीवी में जो चित्र देख रहे हैं वो कितने सत्य होंगे? इतनी ही वकीलों की बात सत्य है, समझ में आई बात? परंतु डॉक्टर लोग कम से कम टीवी के जैसे हैं, क्योंकि वो नजदीक से शरीर को समझते हैं, ये विज्ञान को समझते हैं, परंतु वो समझते हैं कि ये विज्ञान को चलाने वाली और कोई वस्तु है, वही चला रही है। तो आप बताओ, आप लोग क्या अभिमान करते हो कि मैं बच्चे को चलाता हूं या मैं अपने शरीर को चलाता हूं? तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे हाथ में है, हा? तुम जब सोना चाहते हो तब सो सकते हो, जब उठना चाहते हो उठ सकते हो, नहीं, कुछ भी नहीं तुम्हारे हाथ में, ये सब ईश्वर तंत्र है, ईश्वर सूत्र है। ये कौन सा सूत्र है? यही प्रियता। ईश्वर की प्रियता से ही जीव का जीवन चल रहा है। हमारा जीवन ईश्वर की प्रियता से व्याप्त है, हमारा जीवन ईश्वर की सत्ता से व्याप्त है। तुम्हारे अंदर जो होनापन है, वो होनापन तुम्हारा नहीं है, ये ईश्वर का होनापन है। ईश्वर की सत्ता का शरीर में या जीव में आरोप हो जाता है, जो कहता मैं हूं। ये जो अहंकार है ना तुम्हारा, ये अहंकार तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे अंदर जो ईश्वर का आरोपित आया हुआ है। जैसा पति और पत्नी का ग्रहण होता है, पानी ग्रहण होता है, तो घर को पत्नी भी कहती है मेरा घर है, और पति भी कहता है मेरा घर है, है ना? क्योंकि उन एकता के कारण ये अन्योन्याध्यास होता है। घर तो दोनों का भी नहीं है, ना पति का है
ना पत्नी का है, परंतु दोनों भी ऐसा अभिमान करते, ऐसा अभिमान करते कि उस घर में थोड़ा सा किसी ने काला धब्बा लगा दिया या थूक दिया तो महाराज खैर नहीं फिर। परंतु वो दोनों भी नहीं समझ रहे हैं कि अरे ये तो ईंट पत्थर का बना हुआ है भाई, और ईंट पत्थर क्या इनके है क्या, पति के है क्या, पत्नी के हैं, ईंट पत्थर किसके हैं, किसने बनाया ये मिट्टी, किसने बनाई, पति ने बनाई कि पत्नी ने बनाई, हा? क्या है तुम्हारा, कुछ भी नहीं है, चमड़ी से लेकर तुम्हारे रूप से लेकर तुम्हारे गुण से लेकर तुम्हारे धर्म से लेकर तुम्हारे सत्ता से लेकर ये तुम्हारी नहीं है, ये ईश्वर की ही है। क्या तुम्हारी, तुम जो कह रहे हो कि मैं काला हूं मैं गोरा हूं, तुम ना काले हो ना गोरे हो, क्या है, परंतु तुम नहीं समझ रहे हैं, मान लिया तुमने, मूर्ख लोगों ने बताया, वही शिक्षा दी और वही मानते गए। तुम्हारे रूप में भी ईश्वर की व्याप्ति है, तुम्हारे गुणों में भी ईश्वर की व्याप्ति है, तुम्हारे सत्ता में भी ईश्वर की व्याप्ति है, तुम्हारे बुद्धि में भी, मन में भी, इंद्रियों में भी जो कुछ है। प्रत्येक वस्तु ईश्वर है। क्या? प्रत्येक वस्तु ईश्वर है, इसलिए मैं बता रहा हूं ये तेन त्यक्तेन भुंजी था, ये शब्द दिया, बड़ा गहन शब्द है, समझे ना, ऊपर से नहीं लगता है। तेन त्यक्तेन का मतलब उससे क्या करे, उसका त्याग करे और फिर भोग करे, त्याग करे और फिर भोग करे, अब दोनों बात कैसी बनती है, त्याग करेंगे तो भोग कैसा और भोग करेंगे तो त्याग कैसा, प्रश्न होता है कि नहीं है, हा? और तुमने घर घर का त्याग कर दिया तो क्या भोग कर सकते हो घर का फिर, परंतु यहां दोनों शब्द विरोधी शब्द दिए हैं, त्याग भी दिया और भोग भी दिया है, इसका कोई तात्पर्य होगा कि नहीं होगा, हा? तेन त्यक्तेन, तेन का मतलब तेन शब्द, ये जो तृतीया का एक वचन है ये किधर संकेत कर रहा है, संसार के तरफ कर रहा है या ईश्वर के तरफ कर रहा है, हम माना है, कुछ टीकाकारों ने भी माना है, वो लौकिक गौण अर्थ है, त्याग का वो गौण अर्थ है, ये जो लोकाचार में जो माना जाता है वो त्याग वास्तविक, वास्तविक वो त्याग नहीं है, इसलिए तो श्रुति यहां तेन त्यक्तेन, ये तेन शब्द उसके अंदर लगा दिया, उस त्याग के साथ, उस त्याग के द्वारा, उस त्याग से, उस त्याग का भोग करे, क्या किसका भोग करना है, वस्तु का नहीं, त्याग का भोग करना है, अब त्याग का भोग क्या है और कौन सा त्याग, आप लोगों ने तो त्याग की बातें बहुत सुनी होगी, त्याग का मतलब ये पुस्तक ले लिया छोड़ दिया, या द्रव्य त्याग, वस्तु त्याग, गृह त्याग, पत्नी त्याग, पुत्र त्याग, कई प्रकार के हैं। कुछ टीकाकारों ने येष्णाओं का त्याग बता दिया, क्या पुत्रेषणा, वित्तीयषणा, दारेषणा, मानेषणा, लोकेषणा आदि आदि, इन येष्णाओं का त्याग बता दिया, कुछ टीकाकारों ने वस्तुओं का त्याग बता दिया, पदार्थों का त्याग बता दिया, परंतु वास्तविक ये त्याग है ही नहीं, ये त्याग होता ही भी नहीं है। क्या ऊपर से भले आपने घर छोड़ा, परंतु तुम्हारे अंदर जो घर बैठा हुआ है उसको क्या करोगे? देखो ये ध्यान रखो, न कोई वस्तु त्याज्य है न कोई वस्तु ग्राह्य है, न कुछ छोड़ा जा रहा है और न कुछ लिया जा रहा है। यही बात समझाने के लिए ये सूत्र है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, समझ रहे ना? ये ऐसा श्लोक नहीं है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा का मतलब क्या होता है? त्याग का भोग, त्याग का भोग क्या होता है? त्याग का भोग मतलब होता है ना कुछ छोड़ा जाता है और ना कुछ लिया जाता है, समझे ना? अब इस पर विचार चिंतन करना है, इसलिए तो मैं पहले कहता हूं भाई मैं तो चिंतन करता हूं और मैं अपने लिए भी करता हूं, अपने साथ साथ आप लोगों का कल्याण होता है तो ये कामना तो हमारी होती ही है। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजता, तेन शब्द किस लिए दिया है? मैंने जो अभी तक समझाया इसमें आप लोग क्या समझे? अरे आसक्ति हो तब तो त्याग है भाई। हम वेदांती है, समझ ना, किसी को भी आप सिद्ध नहीं कर सकते और किसी को सिद्ध नहीं करेंगे तो हम कैसे मानेंगे? अर्थात जो अध्यास है, जो भाष्यमान वस्तु है, जो तुम कह रहे हो आसक्ति है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, देह है, नाम है, रूप है, गुण है, धर्म है, जाति है, आदि आदि जो तुम है कह रहे हो, समझे ना? मैंने अभी तक क्या बताया? अरे तुम हो ही नहीं, जो कुछ है वो ईश्वर है। क्या तुम्हारी हड्डी ईश्वर है, तुम्हारा चमड़ी ईश्वर है, तुम्हारे अंदर मज्जा ईश्वर है? ये किससे बने? ईश्वर से बने या तुम्हारे मां बाप ने बनाए हैं? अन्न खाते हो कि नहीं खाते हो? क्या बना है? अब वो अन्न किसने बनाया है? मिट्टी ने, जल ने, मिट्टी जल किसकी है? ईश्वर की। और उसी अन्न से तुम्हारा शरीर बन रहा है, इसी हड्डी मांस जो सात धातु बन रहे हैं उसी का तो परिणाम है। तो क्या वो ईश्वर नहीं है? अरे अन्न भी ईश्वर है कि नहीं? अन्न को भी तो ब्रह्म कहा कि नहीं है? तो ब्रह्म ही तो क्या बन गया? तुम्हारा शरीर बना है ईश्वर, जो शरीर बना है इसलिए वो ब्रह्म को ईश्वर कहा जा रहा है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट का मतलब क्या होता है? एको देव सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, ये श्रुति या क्या ऐसा ही है क्या? अर्थात तुम्हारा बाल भी तुम्हारे नहीं हो, वो भी ईश्वर है, रोम रोम। यही व्याप्ति का अर्थ तो क्या होता है? व्याप्ति का अर्थ होता है ये सब ईश्वर स्वरूप ही हो जाना, ईश्वर ही हो जाना, और ये सब ईश्वर ही हो जाता है तो क्या होता है मालूम है? तुम्हारा मैंपना छूटता है कि नहीं छूटता है? मेरापन छूटता है कि नहीं छूटता है? क्या छूटा? बाधित हो गया कि नहीं है? जो कहते हैं कि मैं मनुष्य हूं, अब इस चिंतन से, ईशावास से, इस शब्द के चिंतन से अब तुम्हारे अंदर क्या भाव आ गया? क्या क्या तुम्हें बोध हो गया? शिवो हम ये जो कहते होते ये शिवो हम ये भाव किससे आएगा? ये इसके चिंतन से आएगा, और इस चिंतन से ये भाव आ जाएगा तो ये भाव से क्या हो जाएगा? ये भाव दो वस्तु करता है, क्या करता है? दो वस्तु का निर्माण करता है, त्याग और भोग। समझ रहे हैं? त्याग और भोग ये दो वस्तु का निर्माण करता है। ये आप समझोगे श्रवण करके, मनन करके, निधिध्यासन करके, मल विक्षेप आवरण इन दोषों को दूर करके, जब आपके अंदर ये समझदारी आएगी तो आप क्या देखोगे? हरिरेव जगत है ना, और जगदेव हरि, अर्थात ईश्वर, संपूर्ण इस जगत को आप ईश्वर रूप से अनुभव करोगे कि नहीं करोगे? ईश्वर रूप से अनुभव करोगे तो आप जगत रूप से जो अनुभव कर रहे थे, जगत रूप से जो कह रहे थे, जन्मने वाला मरने वाला रूप जो कह रहे थे या मान रहे थे या समझ रहे थे, ये छूट गया कि नहीं छूट गया? श्रुति इधर संकेत कर रही है तीन शब्द से, समझ रहे ना? अर्थात ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत, ये जो पूर्वार्ध बता दिया है, इस पूरा पूर्वार्ध के द्वारा, अर्थात इसके चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा, निधिध्यासन के द्वारा इसका तुम अनुभव करोगे या तुम्हारे अंदर श्रवण करने से भाव निर्माण होगा, उन भावों में आप डूब जाओगे तो डूबते डूबते आपकी बुद्धि, चिंतन करते करते आपकी बुद्धि तदाकार बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बुद्धि में तदाकारता आएगी। तदाकारता का मतलब ईश्वर आकार आएगा। आप ये पहले आप इस कथा में आप सुन लिया कि भाई ये क्या है, सब ईश्वर है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। ये श्रुति जो बताती है वो हम श्रवण करके हम जब समझ देते हैं, ये आपके मन के अंदर आ गया, मनन करने से आपके अंदर जो तर्क वितर्क कुतर्क आदि क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे नष्ट होते जाएंगे। और ये कही वस्तु, क्योंकि असत्य वस्तु का बाध हो जाएगा और सत्य वस्तु बनी रहेगी। क्या हो जाएगा? चिंतन से, चिंतन मनन का मतलब सत और असत, ये दोनों का ही विवेक है कि नहीं है? सत क्या है, असत क्या है, ये मनन से आपको पता चलेगा। जब मनन करोगे, चिंतन करोगे तो आप सत सत में से असत को अलग करोगे, और क्या हो जाएगा? सत असत से सत अलग क्या हो जाएगा? आप सब चिंतन करोगे और सब चिंतन के द्वारा ये अनुभव करोगे कि जानने वाला और जिसको जाना जा रहा है, जिसको जाना जा रहा है वो मैं नहीं हो सकता, जानने वाला नहीं हो सकता है, और जो जानने वाला है वो जाननीय वस्तु नहीं हो सकता है, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। देह को हम जानते हैं कि नहीं है? नाम रूप गुण धर्म आदि को जानते हो कि नहीं है? तो ये हमारे ज्ञान के विषय हो गए कि नहीं है? जिसको हम जानते हैं वो हमारे ज्ञान के विषय हो गए, और हम उसके ज्ञाता हो गए, और ये हमेशा ये रहता है कि ज्ञाता से ज्ञेय भिन्न होता है और ज्ञेय से ज्ञाता भिन्न होता है, और ज्ञेय बदलता जाता है, हमारे ज्ञान का विषय बदलता जाता है, परंतु क्या हम बदलते हैं? हम बदलते हैं क्या? नहीं, हम नहीं बदलते, कभी भी नहीं, जागृति में नहीं, स्वप्न में नहीं, सुषुप्ति में नहीं, हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। हम जागृति को भी जानते हैं, इसका मतलब है जागृति हम नहीं हैं और जागृति हमारी भी नहीं है। कहा है जिसको हम जानेंगे वो हमारे से अलग हो जाएगा, और जो अलग हो जाएगा उसको श्रुतियां कहती है कि वो नाशवान है। आत्मभिन्नम सर्वम मिथ्या, ये श्रुति का उद्घोष है। आत्मा से भिन्न अर्थात तुम्हारे से भिन्न जो वस्तु होगी वो सर्व मिथ्या होगी, सब मिथ्या होगी। मिथ्या का मतलब क्या होता है? मिथ्या का मतलब दिखता तो है परंतु मिलता नहीं है। सत सद विलक्षणत्वम मिथ्यात्वम, जो हो जिसको सद भी नहीं कहा जा सकता है और जिसको असद भी नहीं कहा जा सकता है, और सत सत जिसको सत और असद भी नहीं कहा जा सकता है उसको शास्त्र मिथ्या कहता है। इसलिए जितना भी ज्ञेय है तुम्हारे द्वारा वो सब क्या हो जाएगा? मिथ्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिथ्या हो जाएगा। बुद्धि को तुम जानते हैं और जानते हो कि बुद्धि तुम्हें जानती है, ये कभी सोचा है? बुद्धि को हम जानते हैं या बुद्धि हमें जानती है? हम बुद्धि को प्रकाशित करते हैं या बुद्धि हमें प्रकाशित करती है? हम बुद्धि को प्रकाशित करते हैं, बुद्धि हमें प्रकाशित नहीं कर सकती है, क्योंकि बुद्धि जड़ है। इसलिए तो हम कहते हैं कि ये बड़ा बुद्धिमान आदमी है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इसका मतलब क्या? इसका मतलब बुद्धि अलग है और मैं अलग है। उस मैं के संबंध से बुद्धि के अंदर बोधपना आ गया और उस बोध के कारण उस वस्तु को, उस पदार्थ को बुद्धि कहा गया है। है नहीं, परंतु चेतन के संबंध से इस देह को देह कहा गया है, हड्डी को हड्डी कहा गया है। इसका मतलब है कि ये सब वस्तु क्या है? मिथ्या है। समझ लेना, मिथ्या जब ये बोध होता है मनन के द्वारा कि ये सत्य नहीं है, मैं ही सत्य हूं, सबका बाद मिथ्या वस्तु को कोई भी रखना नहीं चाहता है, ना कोई लेना चाहता है। जब लेना भी नहीं चाहता है तो क्या छोड़ना चाहेगा? अरे होती ही नहीं तो क्या लेंगे, क्या छोड़ेंगे? कोई वस्तु सिद्ध ही नहीं होती है, सब मिथ्या है। तो यहां तेन शब्द से श्रुति इधर संकेत कर रही है। ध्यान रखो, तेन शब्द का मतलब क्या होता है? उस ईश्वर के चिंतन के द्वारा, उस ईश्वर की सत्ता के द्वारा, उस ईश्वर की ज्ञान के द्वारा, उस ईश्वर की प्रियता के द्वारा क्या करो? इसका त्याग करो का मतलब बाध करो। क्या करो? बाध करो। वास्तविक वस्तु का बाध करने का नाम ही त्याग है। कौन सा त्याग? दो प्रकार का त्याग होता है, एक लौकिक त्याग होता है और एक आध्यात्मिक त्याग होता है। तुम्हारे उत्थान का कारण लौकिक त्याग नहीं होता है, तुम्हारे उत्थान का कारण आध्यात्मिक त्याग होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तुम्हारा उद्धार कब होगा? बाहर तुम लंगा भी घूमे हो, जटा भी बढ़ा दिए हो, अन्न पान पानी भी छोड़ दिया हो, तो क्या तुम्हारा उद्धार होगा? अरे कतई नहीं है। समझ, ये त्याग वो लौकिक त्याग है। लौकिक त्याग से मुक्ति नहीं मिलती है, ध्यान रखो। तुम बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हो, कितना भी लौकिक त्याग करो। तुम उस त्याग से बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हो, ना कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो, ना वासना बंधन से, ना संस्कार बंधन से, ना अविद्या बंधन से। ये सब बंध है, अविद्या से लेकर के इस जो भी दृश्य दिखाई दे रहा है वो सब बंधन है। इस लौकिक त्याग से क्या भोग होगा, क्या भोगा जाएगा? परंतु इस त्याग में भोग भी है। उस ईश्वर के चिंतन के द्वारा इस संसार की सत्ता का, संसार की पदार्थ का क्या करना है, बाध करना है मिथ्या कर करके। इसलिए तो ये स्मृति यही बता रही है, ईश्वर की व्याप्ति को जानो चिंतन करके, और उससे इस जो उस ईश्वर से अलग वस्तु है उसका क्या करो, पहले बाध करो। एक बाध होता है, एक निषेध होता है, बाद में और निषेध में अंतर है, समझिए ना। पहला श्रुति बाध करती है, क्या करती है, बाध करती है और फिर निषेध करती है। अब बाध तो हमारे बुद्धि से किया जाता है, मनन से किया जाता है। क्या बाध जो है हमारे मन से बुद्धि से किया जाता है, क्योंकि बुद्धि में ये बोध हो गया कि ये सत्य नहीं है, मैं सत्य हूं और ये मिथ्या है। तो मन क्या करता है, बुद्धि पहले जान लेती है, विवेक करके, विवेक बुद्धि में होता है, समझना। फिर मन उसको क्या, उसके अंदर जो मेरापन था या जो मैंपन था उसको छोड़ देता है। क्या वो त्याग है, ये आध्यात्मिक त्याग की बात बता रहा हूं मैं, अलौकिक त्याग की भी बात करूंगा आज नहीं करूंगा, कल करूंगा। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो चिंतन है, इस चिंतन के द्वारा सभी में ईश्वर भाव तुम्हारे अंदर निर्माण हो जाएगा, तो संसार भाव तुम्हारा बाधित हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। आप अनुभव करोगे अरे कुछ नहीं, ये तो सब झूठा है। जैसा श्मशान में जाते हैं कि नहीं लोग, तो श्मशान में क्या अनुभव होता है, हा? संसार सत्य का अनुभव होता है। कुछ नहीं जी, अभी 10 मिनट पहले ही मैंने बात करा किए थी, बताओ क्या है, सब झूठा है, है? परंतु कब तक, जब तक श्मशान की तरह आपका मुंह है ना, उधर जब तक चल रहे तब तक, और वहां से जैसे उसका पीठ कर दिए और घर की तरफ दृष्टि कर दी, मुख कर दिया, तो क्या सत लगता है। ये त्याग है, इसको त्याग कहेंगे क्या, संसार का त्याग ऐसा ही त्याग है। क्या है, त्याग तो है, परंतु त्याग के साथ साथ घर की आसक्ति नहीं छूटी है, कुछ छूटा है क्या, कुछ नहीं छूटा है। तो लौकिक त्याग तो ऐसा ही, एक महात्मा मुझे कलकत्ता में मिले थे, पहले घर के बहुत श्रीमंत थे बेचारे, और फिर महात्मा बन गए तो बड़े परेशान हो गए। कहा कि महाराज क्या बताएं, मैं करीब 45 साल से साधु बन गया, सन्यासी बन गया हूं। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है भाई, पर कहा महाराज बहुत परेशान हो। तो मैं, हमने कहा भाई परेशानी क्या चीज है। कहा कि महाराज खाने के लिए बराबर मिलता नहीं है, कोई आश्रम में मेरे को कोई रखता नहीं है, रहने के लिए ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। कहा बड़ा परेशान हूं मैं, बीमार पड़ता हूं तो दवाई के लिए पैसा नहीं है, तो परेशानी तो है। हमने कहा बात तो सही है भाई। कहा कि महाराज ये सब पहले बता दिया, और फिर कहता महाराज मेरे घर में पत्नी भी इतनी अच्छी थी मेरी, इतनी अच्छी थी, बहुत सुंदर दिखने के लिए थी और बड़ी सेवाभावी भी थी, परंतु क्या करे महाराज मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरी ही मूर्खता है कि मैंने छोड़ दिया। बच्चे भी अच्छे थे और इतनी बढ़िया दुकान चल रही थी, रोज का पैसा हाथ में आता था, कोई कमी नहीं थी, पर पता नहीं बाबा के चक्कर में गया और मैंने घर छोड़ दिया। मुझे बड़ी हंसी आई। हमने कहा मूर्ख कहकर भाग्या से, हमने आज तुमने छोड़ा है क्या, तुमने संन्यास लिया है कहा, क्यों संन्यास का पाखंड कर रहे हो, क्यों त्याग का पाखंड बता रहे हो। ये पाखंड जो होता है ना, ये त्याग नहीं, त्याग का पाखंड है, त्याग का पाखंड ही दुख का कारण है। इसलिए यहां शास्त्रों ने या श्रुतियों ने, वेदों ने इस त्याग का कोई महत्व नहीं दिया है, समझना। ये त्याग करे या त्याग न करे, इसका कोई अर्थ नहीं है। त्याग होना चाहिए तो आध्यात्मिक त्याग होना चाहिए, बात समानाधिकरण जिसको कहते हैं वेदांत शास्त्र में, इन वस्तु को बाद समानाधिकरण कहा गया है। मुख्य समानाधिकरण और बाद समानाधिकरण, ये दो अधिकरण हैं, समझ। अर्थात अधिकरण का मतलब होता है अंदर के साधन, अधि का मतलब होता है अंदर, और करण का अर्थ होता है साधन। तुम्हें आनंद का भोग करना है, क्या अमृतत्व का, अमृतत्व को प्राप्त करना है तुम्हें, तो किससे करोगे? बाहर की वस्तु से तुम्हें आनंद मिलेगा? बाहर की कितनी भी वस्तुएं छोड़ोगे तो तुम्हें कोई आनंद नहीं मिलने वाला, दुख ही मिलने वाला, पछतावा ही आने वाला। इसलिए ऐसे बहुत से सन्यासी पछताते हैं कि क्या करें महाराज, बड़ी हमारी गलती हो गई है। उनको अकल तब आती है जब कुछ नहीं कर सकते, जब बुढ़े होते अंगम गलितम पलितम मुंडम, जब ऐसा होता है तब उसको कहता है कि वास्तविक मेरे को जो करना था वो नहीं कर पाए, और अब क्या करे, पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता है। इसलिए यहां श्रुति उस त्याग के तरफ दृष्टि ले जाने के लिए तीन शब्द प्रयोग कर रही है। तीन का मतलब होता है पहले ईश्वर का क्या करो, मनन के द्वारा, निधिध्यासन के द्वारा भाव निर्माण करो, और चिंतने चिंतने तद्रूपता, फिर उसके अंदर तद्रूपता लाओ। क्या लाओ? तद्रूपता लाओ। जब इस भाव के द्वारा जो बाध होगा, भाव क्या करता है, संसार भाव को परमात्मा भाव बाधित कर देता है। जब परमात्मा भाव सत्य होता है, या इस भाव में परमात्मा ही सत्य है ऐसा जब निश्चय होता है, तो संसार का झूठपना अपने आप ही होता है, तुम्हें करना नहीं पड़ता है। इसलिए ये त्याग अभिमान निर्माण नहीं करता है, ये ध्यान रखो। ये त्याग अभिमान निर्माण करता है, तुम्हें परिच्छिन्न बनाता है, छोटा बनाता है, आज छोटा बनाता है तो दुखी कर देता है। परंतु ये जो त्याग है ना, ये त्याग तुम्हारे अंदर अभिमान निर्माण नहीं करता है, क्योंकि वो तुम्हें पता ही नहीं लगता है ये कैसा छूट गया। तो अभिमान तब होगा ना कि तुम करोगे तब। और ये तुम्हारा जब परमात्मा को सत्य बनाने की जरूरत है, संसार को झूठा करने की कतई जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहता हूं संसार झूठ हो तब तो झूठ होगा। अरे श्रुति यहां तक कहती है कि ये सब ब्रह्म ही है, झूठ क्या करना है फिर? संसार भाव को समझ रहे ना, किसको झूठ करना है? जो तुम्हारे अंदर परमा संसार भाव जो सत्य रूप से बैठा हुआ है, देह को ही सत्य मान रहे हो, नाम रूप गुण धर्म जाति वर्ण आश्रम देश काल आदि को ही जो सत्य मान रहे हैं, तुम्हें कोई पूछता है तो कहते महाराज कल का मेरा बर्थडे है, महाराज जरूर आशीर्वाद दे रहा, मुझे अभी तक नहीं समझ में आया। मैंने एक को पूछा था, वो हमारे मित्र थे और वो अपना बर्थडे बना रहे थे। हमने कहा, मुझे थोड़ा सा ये लगा, हमने कहा स्वामी जी आप ये बताओ कि बर्थडे बना रहे हो, ये सत्य बर्थडे है कि झूठ बर्थडे है? दीदी श्याम दो ही थे। कहा कि ये क्या बात करते हो, हा? मेरा सही जन्म हुआ था उस दिन, इसलिए ये मेरा बर्थडे बिल्कुल सत्य है। हमने कहा कैसा कहते हो? कहा कि मेरे को मालूम है। हमने कहा क्यों झूठ बोल रहे हो तुम, एक के ऊपर एक झूठ बोलते जा रहे हो, तुम्हें मालूम है तुम्हारा बर्थडे क्या है? तो किसी को भी नहीं मालूम, किसी ने बता दिया है ना, मां ने बता दिया या बाप ने बता दिया, पड़ोसी ने बता दिया, डॉक्टर ने बता दिया या नर्स ने बता दिया, और तुमने मान लिया। ये माना हुआ बर्थडे है कि वास्तविक है? अरे तुम अपने जन्म की ही सिद्धि नहीं कर सकते हो तो मृत्यु की सिद्धि, मृत्यु का भय किस लिए? और यही तो संसार है। संसार क्या चीज है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसार है। बार बार जन्मना, बार बार मरना, सुनिएगा, ये है जन्म और मृत्यु, यही संसार है। और यही भाव आपके अंदर सत्य रूप से बैठा हुआ है। श्रुति इसके तरफ संकेत कर रही है, इसका त्याग करना है। किसका त्याग करना है? अरे ये वस्तु का त्याग नहीं, त्याग का पाखंड है। शास्त्र इन त्याग की निंदा करता है, समझ रही ना? त्याग करना है, ये आध्यात्मिक त्याग है, पारमार्थिक त्याग है और वास्तविक है, क्योंकि इसी त्याग का आनंद हो सकता है। दूसरे त्याग में आनंद नहीं है, दुख है। जो दुख रूप त्याग है वो क्या त्याग है? नहीं। या परमात्मा का सत्य का बोध हो जाए और संसार का झूठ के रूप में, मिथ्या रूप से बाध हो जाए, ये आनंद है। और इस आनंद का भोग तेन त्यक्तेन भुंजिथा, ये श्रुति कह रही है कि उससे त्याग करे और फिर भोग करे। भोग का मतलब आनंद। और ये त्याग हो जाएगा, संसार भाव बाधित हो जाएगा, तो परमात्मा भाव का, परमात्मा भाव तो आनंद ही है, उस आनंद का फिर आनंदित हो जाओ। इसको जीवन मुक्ति कहा जाता है, जीवन मुक्ति। ये जीवन मुक्ति का आनंद है। तो आज यही विराम कर लेते हैं, क्योंकि दो मिनट ज्यादा हो गए और फिर अभी स्वाध्याय भी करना है। इसलिए तेन त्यक्ति न भुंजिता मा गृध कस्य स्विद्धनम, इस पर और भी दो दिन चलेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।